श्री पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 115 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने प्रणामो अरिहंताण प्रणामो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्जायाण नमो लोये सौवसाहुण
इंद्रवंदियाण
तिहुवणहितमधुर विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणम् जिदभवानम्। ये पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र है, उस शास्त्र के गाथा नंबर 107 को पढ़ते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 12 पर आए हैं। बात यहाँ पर यह है कि हमने गाथा भी पढ़ी थी और उसका अन्वयार्थ भी पढ़ा था। आज तात्पर्य वृत्ति टीका जो है, जो जयसेन आचार्य की है, वो वहां से चालू करते हैं, पेज नंबर 12।
हाँ, अथ व्यवहार सम्यक दर्शनम कथ्यते। अब यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय चलेगा। एवं जिनपन्नते
सद्धमानस्वभावदो भावे पुरिषस्सादिनो दे दंशनसद्दो हवदिजुते।
अभी उसका अर्थ करते हैं। एवं एवं मैंने पूर्वोक्त प्रकार से, हम कहते इस प्रकार, पहले जो बताया उन्होंने इस प्रकार। जिन पन्नते यानी जिन प्रज्ञप्तान यानी जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ, उसका अर्थ किया। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीतान यानी वो सब जो नौ पदार्थ वगैरह किसने बताया है, तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, उसको ही प्रज्ञप्तान कहे, उसी को प्रणीतान कहेंगे। सद्ध मानस श्रद्धधता भावदो रुचिरूप परिणामतः, क्या कहने उसकी श्रद्धा करने वाले किस तरह से, भाव से, भाव से ने रुचिरूप परिणाम से, रुचिरूप परिणाम से यानी रुचि से प्रीति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है उनकी श्रद्धान करने वाले की बात चल रही है। कान कर्मता अपन्नान किसके, तो कहते यानी उस वाक्य का कर्ता कर्म उसकी बात चल रही है। भावे त्रिलोक त्रिकाल विषय समस्त पदार्थगत सामान्य विशेष स्वरूप परिच्छित्ति समर्थ केवल दर्शन ज्ञान लक्षणा आत्मद्रव्य प्रभृति समस्त भावान पदार्थान, क्या कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए। जिनेन्द्र भगवान ने क्या बताए है, तो पदार्थों के यानी किसकी श्रद्धा करते, तो पदार्थों के। पदार्थों में क्या लेना है, तो त्रिलोक यानी पूरे लोक वाले और त्रिकाल विषयक समस्त पदार्थगत जो सामान्य विशेष स्वरूप परिच्छित्य समर्थ, परिच्छित्य ने उसके ज्ञान, उसके समर्थ ऐसे जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान लक्षण जो आत्मद्रव्य प्रभृति, आत्मद्रव्य से आदि लेकर, प्रभृति का अर्थ होता है इत्यादि आदि यानी अन्य सभी जीवादि नौ पदार्थ कहते ना इस तरह से, उनके पदार्थों का कस्य किसके, तो पुरुषस्य, पुरुषस्य ने भव्य जीवस्य, कस्मिन सति क्या होने पर, आभिनिबोधे आभिनिबोधे ने मति ज्ञाने सति मति पूर्वक श्रुत ज्ञाने वा यानी उसका ज्ञान होने पर यानी मति ज्ञान होने, आभिनिबोधिक ज्ञान का अर्थ होता है मति ज्ञान, क्योंकि अभी यानी अभिमुख सन्मुख होकर जानते इंद्रियों के जो विषय है, मति ज्ञान से जो बाह्य पदार्थों को जानने जाता है उसको, उस अपेक्षा से उसको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। अभी क्यों, क्योंकि वो इंद्रिय जो ज्ञान है, इंद्रिय अपने विषय के सन्मुख होकर जानती, इसलिए अभी मी यानी अपने निश्चित विषय को जानती है, जो आंखें वो देखने का ही कार्य करेगी, और कान यानी जो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ध्वनि का ग्रहण यानी सुनने का कार्य होगा। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करती है, इसलिए उसको बोध यानी ज्ञान अपने विषयों के सन्मुख होकर निश्चित विषय का ज्ञान करने वाले होने से मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। और यहाँ मति ज्ञान की बात लेना या मतिपूर्वक श्रुत ज्ञान एवा, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए उसका भी यहाँ ग्रहण समझना चाहिए। होने पर एवं सती ऐसा होता है ना। मतिपूर्वक श्रुत ज्ञान एवा दंशन सद्दे दार्शनिक अयम पुरुष इति शब्द है। यानी वो पुरुष बताए ना दर्शन शब्द में, इसको पुरुष इसे कहते हैं। हवद यानी भवदी, कथम भूतो भवती, जुत्तो यानी युक्त, उचित इति युक्त कहो उचित हो, ऐसा उसका अर्थ है। अत्र सूत्रे यद्यपि क्वापि निर्विकल्प समाधि काले निर्विकार शुद्धात्म रुचि रूपम निश्चय सम्यक्त्वं स्पृशति तथापि प्रचुरेण बहिरंग पदार्थ रुचि रूपम यद व्यवहार सम्यक्त्वं तस्सैव तत्र मुख्यता तस्मात् विवक्षितो मुख्य इति वचना तदपि कस्मात् व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यान प्रस्तावात् इति भावार्था। क्या कहना चाहते हैं यानी सूत्र में, ऊपर क्या बताया था सूत्र की बात है ना, ये जो सूत्र उन्होंने एक श्लोक जो बताया है, एवं जिन पन्नत्ते सद्ध मानस भावदो भावे, यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो पदार्थ है तो उसके श्रद्धा करने वाले से वो पदार्थों के भावे यानी वो पदार्थों की नव पदार्थ जिसको कहेंगे उसकी श्रद्धा करने वाले के उस पुरुष से यानी उस पुरुष के क्या होने पर आभिनिबोधे यानी उसके ज्ञान होने पर दंशन सद्दो हवदी जुत्ते यानी युक्त होता है। और हाँ तो इसलिए कहते कि सूत्र में यद्यपि कभी कभी क्वापि यानी कभी कभी निर्विकल्प समाधि काल में निर्विकार विकार रहित ऐसे शुद्धात्म रुचि रूप निश्चय सम्यक भी होता है, पुरुषत्व यानी शुद्ध उपयोग भी होता है, क्योंकि निश्चय बिना का तो उसको व्यवहार भी नाम नहीं देते हैं। यानी कभी कभी उसके निर्विकल्प समाधि में भी व्यवस्थित हो जाता है, फिर भी यहाँ मुख्यता किसकी, व्यवहार की अपेक्षा से मुख्यता से यहाँ व्याख्यान चलेगा। इसलिए कहते हैं प्रचुरेण यानी मुख्यता बहिरंग पदार्थ रुचि रूप यद व्यवहार सम्यक्तम। बहिरंग पदार्थ रुचि रूप बाह्य पदार्थों की रुचि यानी वो टीवी देखने की रुचि, ऐसा नहीं समझना। ये नौ पदार्थों की जो भगवान ने बताए हुए जो पदार्थों का भेद करके जो उसमें जानने की जो रुचि है उसकी बात है, यानी उसके यथार्थ उसको श्रद्धा ने कि नहीं ऐसा ही सच है इस तरह से उसको जो स्वीकार करता है उसकी बात है। उसको यहाँ व्यवहार सम्यक तो कहा है, वैसे तो सम्यक दृष्टि के जो वहाँ राग भाव है उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कह देते हैं। तो उसके सात तत्व का नौ पदार्थों की उसकी रुचि है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धान है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन नाम देने पर आता है। तस्सैव सम्यक्त्व कहने से व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र तीनों आते हैं उसमें। तस्सैव तत्र मुख्यता उसकी वहां मुख्यता है। कस्मात् क्यों विवक्षितो मुख्य इति वचनात्, मुख्य किसको कहना और गौण किसको कहना। हाँ मुख्य किसको कहना, विवक्षित उसको, विवक्षित हमें यहाँ व्यवहार बताना है तो व्यवहार की यहाँ मुख्यता है, इसलिए उसकी मुख्यता से बात होगी। हमेशा अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय की मुख्यता की जाती है क्योंकि उसी से अनुभव होगा, परंतु यहाँ शिष्य को समझाना है तो व्यवहार की मुख्यता, क्योंकि व्यवहार अपेक्षित है उसको विवक्षित है, ये भेद करके कथन करना चाहते हैं आचार्यों का अभिप्राय क्या है, तो व्यवहार को समझाना। व्यवहार ने भेद वस्तुओं का जो भेद है, जीवादि पदार्थों को भी भेद से समझा रहे हैं, सामान्य से और विशेष से। विशेष से उसी पर्याय से, इसलिए उसकी मुख्यता से यहाँ कथन है। ये वही विवक्षित है, वही मुख्य है। तदपि कस्मात् व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यान प्रस्तावाद इति भावार्था। क्योंकि यहाँ क्या बताना चाहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है वो समझाना चाहते हैं, इसलिए उसी की यहाँ मुख्यता है, वही विवक्षित है। अथ सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयस्य विशेष विवरण करोगे। हाँ, पहले तो हो गए, अभी उसके आगे बताएंगे। हाँ, वो तो उन्होंने व्यवहार समय दर्शन का स्वरूप बताया, अभी यहाँ गाथा की बात यहाँ समझाएंगे। अथ समय दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयस्य विशेष विवरणम करोती। देखो, सम्यक्त्व कहने से उसमें तीनों आ जाते हैं, समय दर्शन, समय ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो कहते हैं उसका विशेष विवरण कहते हैं, विशेष उसका व्याख्यान करेंगे, स्वरूप बताएंगे। विवरण यानी उसका डिस्क्रिप्शन। सम्यक्त्वं भवति यानी सम्यक तो होता है, किम कर्तृ तो सम्यक तो होता है, तो
इसको
सम्यक्त्व कहा उसको। सद्दहनम के मिथ्या तो उदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम श्रद्धानम, यानी विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय यानी उल्टी मान्यता अपने शब्दों में। तो मिथ्यात्व के उदय से जनित, यहाँ निमित्त बताया, मिथ्यात्व वहाँ कर्म है, पर जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव कर रहा है, उल्टी मान्यता जीव स्वयं कर रहा है, कर्म उसको उल्टी मान्यता नहीं करा रहा है, परंतु वहाँ मिथ्यात्व कर्म हाजिर है। तो इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व के उदय जनित यानी उसके उदय से उत्पन्न जो विपरीत अभिनिवेश यानी उल्टी मान्यता, उससे जो रहित है यानी जो उल्टी मान्यता से रहित है, यानी जिसकी मान्यता सच्ची है, यथार्थ श्रद्धान जो है, कहाँ गया, रहितम श्रद्धानम यानी उल्टी मान्यता रहित ऐसा जो श्रद्धान है, केशाम संबंधी, किससे संबंधी उल्टी मान्यता, ये पेन है, हमने उसको पेंसिल समझा, ये उल्टी मान्यता कहलाएगी। आप कहाँ कह रहे हैं, वो बाहर कोई वृक्ष में कुछ सफेद सफेद दिख रहा है, हमने सोचा वो कोई पक्षी बैठा है, वो था वहाँ कोई पतंग अटका हुआ था, हाँ, तो उसकी उल्टी मान्यता की हमने, तो उसको मिथ्या मान्यता कहेंगे, समझ में, इस संबंधी उल्टी मान्यता, ये अभी क्लियर है। हाँ, अभी वो बता रहे, वो स्वयं इनकी स्टाइल है, स्वयं प्रश्न उठा उठा कर उसका समाधान कर रहे हैं। तो केशाम संबंधी, किसके संबंध में उल्टी मान्यता से रहित है, तो भावानम पंचासिकाय षड द्रव्य विकल्प रूपम जीव अजीव द्वयम जीव पुद्गल संयोग परिणाम उत्पन्न आश्रवादि पदार्थ सप्तकम च इति उक्त लक्षणानाम भावानाम जीवादि नव पदार्थानाम। यानी क्या कहते, किसका श्रद्धान, कहते जीवादि नव पदार्थों का। तो जीवादि नव पदार्थ समझाने के लिए क्या कहा, पांच अस्थिकाएं और षड द्रव्य, इस तरह से विकल्प रूप है इसके भेद रूप, ऐसे कौन है, जीव और अजीव, ये दो है। जीव और अजीव को ही हम पंचास्थिकाएं में डिवाइड करेंगे, एक बाजू जीव है यानी जीवास्थिका और बाकी सब अस्थिकाएं वो अजीव में आ गए। यहाँ षड द्रव्य, षड द्रव्यों के भेद, जीव और अजीव के ही भेद है छह द्रव्य, एक जीव द्रव्य और बाकी पांच अजीव द्रव्य है। तो पंच अस्थिका और षड द्रव्य के भेद रूप से जो जीव और अजीव दो है, और दूसरी क्या बात है, वो तो दो हो गए, जीव अजीव दो तत्व तो ये हो गए। अब जीव पुद्गल संयोग परिणाम उत्पन्न, जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न, अभी यानी कर्म की अपेक्षा लगा लो, उसमें कर्म यानी पुद्गल में कर्म ले लो, क्या क्या है, आश्रवादी पदार्थ सप्तकम, ये आश्रवादी सात बताएंगे मनीषा भी। हाँ, पदार्थ कहो तत्व कहो आश्रवाद, वो सब बता दिया, वो दो पहले बता दिया, आश्रवादी सात को आपको बताना है। हाँ, ના બોલ્યો હા પુણ્ય પાપ ને લાગો ના બરોબર સાથ હોય ને હા હમેશે આશ્રવ બંધ સમયની જરા મોક્ષ પાંચ ગિનતે ઉસમે પુણ્ય પાપ ઓર મિલા તો સાત હોગો તો આશ્રવાદી સાત બતાયે ઉન્હોને યહી કહેતે આશ્રવાદી પદાર્થ સપ્તકમ એને સાત પદાર્થ ચ ઇતિ ઉક્ત લક્ષણાનામ ભાવાનામ વહાં ક્યા કહેતે ભાવો કા શ્રદ્ધાન વો ભાવ મેં ક્યા લિયા યે ઇતને ભેદ લીએ નવ પદાર્થો કો ભાવ કહા ઉનકા શ્રદ્ધાન દૂસરી ભાષા મેં જીવાદી નવ પદાર્થાનામ એને જીવાદી નવ પદાર્થો કી શ્રદ્ધાન કો સમ્યત્વ કહા એ વાક્ય હુઆ આપના ઇદમ તુ નવ પદાર્થ વિષયભૂતમ વ્યવહાર સમ્યક્વમ એ જો નવ પદાર્થ વિષયક જો હે ઉસકો વ્યવહાર સમ્યક્વ કહા કિમ વિશિષ્ટમ વો ક્યા વિશેષતા વાલા હે વો શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય રુચિરૂપસ્ય નિશ્ચય સમ્યક્વસ્ય છદ્મસ્થ અવસ્થાયામ સાધકત્વેન બીજભૂતમ તદેવ નિશ્ચય સમ્યક્વમ ક્ષાયિક સમ્યક્વ બીજભૂતમ ક્યા કહેતે હૈ ઉસકી ક્યા વિશેષતા વાલા હૈ વો તો શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય કે રુચિરૂપ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય જો અભી હમ દેખ રહે હૈ કે અપના ત્રિકાલી શુદ્ધ શુદ્ધ આત્મા કહો ભગવાન આત્મા કહો શુદ્ધ ભાવ કહો પારણામિક ભાવ કહો કારણ પરમાત્મા કહો યે જો હૈ ઉસકી રુચિરૂપ એ નિશ્ચય સમ્યક્વ હૈ ઓર છદ્મસ્થ અવસ્થા મેં વો સાધકત્વ કા બીજભૂત વહી નિશ્ચય સમ્યક્વ હૈ વો ક્ષાયિક સમ્યક્વ બીજભૂત હૈ એને ઉસકા ક્ષાયિક સમ્યક્વ સે પહેલે વો તો સમય દર્શન હોગા સામાન્ય સે જિસકે હમ ઔપશમિક કહેંગે ક્ષાઉપશમિક કહેંગે ફિર ક્ષાયિક હો જાયેગા તેસિમ તેશામ નવ પદાર્થાનામ અધિગમો અધિગમે ને જ્ઞાન નવ યાન સંસ્કાર રૂપ વિપરીતા અભિનિવેશ ગતિર અધિગમ અનભિનિવેશ અનભિનિવેશ ગતિરહિત અધિગમ સંશયાદિ રહિત અવબોધ યહાં કિસકો કહેતે ઉનકા યાને નવ પદાર્થો કા અધિગમ અધિગમ કા અર્થ હોતે જ્ઞાન વો જ્ઞાન કો સમજાને કે લિયે કહેતે નવ યાન સંસ્કાર રૂપ વિપરીતા નવયાન એને વો તો નૌકા હે નવયાન એને નૌકા અનભિનિવેશ અભિનિવેશ કા અનભિનિવેશ ગતિર અધિ નવયાન એને નૌકા રૂપ એસે ટ્રાન્સલેશન હોગા ઉસકે સંસ્કાર રૂપ હોગા શાયદ વો પહેલે નૌકા કા ઉદાહરણ દેતે થે એસા હોગા
107
હા મેને નિકાલ કે રખા હૈ યહાં કહેતે ઉન નવ પદાર્થો કા જ્ઞાન મિથ્યાભિપ્રાય કે અભાવ મેં ઓ નવયાન મેં નૌકા કહાં લિખા હૈ નૌકા
તેસિમ કે આગે
તેસિમ
નૌકા ગમન સંસ્કાર ની માપક યે કિનકા અનુવાદ
આગે આગે ઉસકે હા અનુવાદ મેં દેખેંગે ના હા એક મિનિટ નૌકા ગમન ના સંસ્કાર ની માપક યહાં કુછ એક મિનિટ નાવ મેં બેઠે હુએ મનુષ્ય કે સંસ્કાર રૂપ વિપરીતતા સે રહિત નવ પદાર્થો કા જ્ઞાન નાવ મેં બેઠે હુએ મનુષ્ય કે સંસ્કાર રૂપ વિપરીતતા સે રહિત મિથ્યા અભિનિવેશ સે રહિત હોને વાલા જ્ઞાન વો સમ્યક જ્ઞાન હૈ उसको हम प्रवचन में देखेंगे बाद में। यहाँ पढ़ते हैं नौ यानी ने नौ का संस्कार रूप से विपरीत अनभिनिवेश लिखा है, गति अधिगम है। वो कैसे होता है वो अधिगम है ज्ञान संशयादि रहित अवबोध। अधिगम का अर्थ क्या किया, संशयादि रहित। देखो संशयादि में किसको लेना, हाँ संशय यानी ऐसा है क्या वैसा है उसको संशय कहेंगे। विपरीत, विपरीत यानी उल्टा ही जान लेना उसको विपरीत कहेंगे। अनद्योसा ने वो ठीक निर्णय नहीं है, निर्णय बिना का है मगर क्या है पता नहीं कुछ तो है, इस तरह से उसको अनद्योसा कहते। उससे रहित मिथ्या ज्ञान के भेद है वही तो कहते हैं, उससे रहित संशयादि रहित अवबोध उसको अधिगम कहा। यानी ये नौ पदार्थों संबंधी संशयादि रहित तो उसका ज्ञान हो जाना। नाणम सम्यक ज्ञानम इदम तु नव पदार्थ विषय व्यवहार ज्ञानम छद्मस्थ अवस्थायाम आत्म विषय स्वसंवेदन ज्ञानस्य परंपरया बीजम तदपि स्वसंवेदन ज्ञानम केवल ज्ञान बीजम भवती। क्या कहना चाहते हैं, ज्ञान किसको क्या यहाँ, ये जो सम्यक ज्ञान है नव पदार्थ विषय वो तो व्यवहार ज्ञान है। छद्मस्थ अवस्था में आत्मा को विषय करने वाला जो स्वसंवेदन ज्ञान का ये परंपरा से बीज बताया उसको, क्योंकि आत्मज्ञान होने के पहले आत्मा का अनुभव होने के पहले भगवान ने बताए हुए ये छह द्रव्य है उनको जो नौ पदार्थ है उनका सही ज्ञान होगा और उल्टी मान्यता रहित बराबर उसके स्वीकार भी होना चाहिए। वही यहाँ बता रहे हैं कि उसको ये जो आत्मा के अनुभव वाला है उसका परंपरा से ये बीज है। कहाँ परंपरा से, क्यों केवल वो जानने से आत्मा का अनुभव नहीं होने वाला, परंपरा इसलिए किया कि आगे चलकर वो अपने सन्मुख होकर अपना शुद्धात्मा का लक्ष्य करके उसमें स्थिर हो जाएगा तो उसका अनुभव होगा, परंतु ये जानकर आगे की बात है क्योंकि इसको जाने बिना फिर श्रद्धा किसका करेगा, आगम से पहले इसका ज्ञान उसके होना चाहिए। तदपि केवल सम्यक ज्ञान नहीं लिया, स्वसंवेदन ज्ञान लिया यानी आत्मा का अनुभव है उसको स्वसंवेदन ज्ञान कहा, वो केवल ज्ञान का बीज है। चारित्तम चारित्रम स कह, देखो यानी यहाँ ये जो पहले सम्यक्त्व कहा फिर उसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र के भेद से उसको अलग अलग समझा रहे। अब चारित्र को बताने, चारित्रम भवती चारित्र होता है, स कह वो क्या है समभाव, जिसको साम्य भाव कहो या समभाव कहते वही चारित्र। केशु किसके बारे में साम्य भाव, तो विशेषु विषयों में इंद्रिय मनोगत यानी इंद्रिय और मन के द्वारा जो जानने में आते हैं सुख दुख उत्पत्ति रूप शुभाशुभ विशेषु यानी शुभ और अशुभ विषयों में शुभ और अशुभ जिसको हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं ऐसे शुभ और अशुभ विषयों में जो सुख और दुख की उत्पत्ति के कारण है और जो इंद्रिय और मनों के द्वारा जानने में आते हैं ऐसे विषयों के बारे में साम्य भाव यानी अनिष्टता भाषित नहीं होनी वही साम्य भाव है, जिसको हम कहते अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों में उनके साम्य भाव रहता है। मुनियों को कोई उपसर्ग आवे या कोई उनकी बहुत स्तुति करे या कोई निंदा करे तो उनके उनके प्रति कोई राग द्वेष के परिणाम नहीं, साम्य भाव होता है। ऐसा नहीं कि अभी मुझे नहीं करना चाहिए और रोकना है कुछ बोलना नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे हम कहते ना आज क्या है उत्तम क्षमा, आज सब कुछ क्षमा करो, क्रोध नहीं करना, क्रोध आ रहा है अभी आज नहीं करना, कल से करना। अच्छा केशाम भवती किसके होता है ये साम्य भाव यानी चारित्र किसके होता है, इंद्रिय विषयों के बारे में साम्य भाव किसके होता है, केशाम भवती पूछ रहे स्वयं उत्तर दे रहे। विरूढ़ मग्गाणम पूर्वोक्त सम्यक्त्व ज्ञान बलेन समस्त अन्य मार्गेभ्य प्रच्युत्य विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम विरूढ़ मार्गाणाम परिज्ञात मोक्ष मार्गाणाम। क्या कहते हैं ये किसके होता है, तो मोक्ष मार्गियों को होता है। कैसे मोक्ष मार्गी है तो ऊपर बताए जो सम्यक और ज्ञान के बल से समस्त अन्य मार्ग से वो समस्त अन्य मार्ग छोड़कर विशेष रूप से रूढ़ मार्ग में जो आरूढ़ है विरूढ़ मार्ग आरूढ़ कहते हैं वैसे विरूढ़ है विशेष रूप से रूढ़ मार्ग है यानी परिज्ञात यानी अच्छी तरह से जो जाना गया है ऐसे मोक्ष मार्ग में वो आरूढ़ है उन जीवों को होता है। इदं तु व्यवहार चारित्रम बहिरंग साधकत्वेन वितराग चारित्र भावना उत्पन्न परमात्म तृप्ति रूपस्य निज सुखस्य बीजम तदपि निश्चय सुखस्य बीजम तदपि निश्चय सुखम पुनः अक्षय अनंत सुखस्य बीजम इति। क्या कहते हैं ये जो व्यवहार चारित्र बताया है यानी जो निश्चय से जो मोक्ष मार्गी जीवों के जो इंद्रिय विषयों के प्रति या मन के संबंधी जो सुख दुख है उसमें साम्य भाव पाया जाता है तो ये जो व्यवहार चारित्र है बहिरंग साधकत्व ने उसको बहिरंग साधक कहा। किसका साधक ये तो व्यवहार कथन है वो उसके कारण निश्चय प्रकट होता ऐसा नहीं है वो सहचर है तो उसको साधक कहा जाता है ये कथन पद्धति है। तो किसका बहिरंग साधकत्व है ना वितराग चारित्र भावना उत्पन्न वितराग ने राग रहित ऐसा जो चारित्र है जिसको हम निश्चय से अंतरंग में चरना कहें उस भावना ने उस रूप एकाग्र होकर स्थित रहना भावनाएं ने केवल हमने इच्छा की उसको भावना नहीं कहते तो वितराग चारित्र रूप जो उस रूप परिणमित हुआ है उससे उत्पन्न क्या है परमात्म तृप्ति रूप से जिसको परमात्म तृप्ति उत्पन्न हुई अति आनंद की उत्पत्ति हुई जिसको हम कहने तृप्ति हो गई उसके अंदर ऐसे जो निश्चय सुख है उसका बीज है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र का बीज कहा है परंतु उसको कहीं व्यवहार से कहा है परंपरा से कहा है उसके कारण वो उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हमने देखा जिसका आत्मा का अनुभव नहीं है केवल व्यवहार बाह्य से कुछ चारित्र पाल दिया तो उसके उसको आत्मा का अनुभव होता है उसके कारण ऐसा नहीं है फिर भी उसको कहते हैं तदपि फिर भी निश्चय सुखम पुनः अक्षय अनंत सुख से बीजमिति ये जो निश्चय सुख उत्पन्न हुआ है अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद हुआ है यानी उसमें जो चरणा जिसको है ना रममान होना स्थित हो जाना वो किसका बीज है अक्षय अनंत सुख का वो बीज है। अत्र यद्यपि साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थम निश्चय व्यवहार द्वयम् व्याख्यातम तथापि नव पदार्थ विषय रूपस्य व्यवहार मोक्ष मार्गस्य एव मुख्यत्वम् इति भावार्थः। क्या कहना चाहते हैं यहाँ साध्य और साधक भाव निश्चय को साध्य कहा जो साधना चाहते हम और उसका साधक व्यवहार को कहने में आता है फिर भी इसलिए दोनों का यहाँ कथन किया निश्चय और व्यवहार दोनों का कथन किया है फिर भी तथापि नव पदार्थ विषय रूपस्य यानी नव पदार्थ विषय रूप जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उसी की यहाँ मुख्यता है क्योंकि यहाँ विषय ही हमारा है उसका कथन करना। आप कहेंगे देखो यहाँ उसको मुख्य किया है और अध्यात्म ग्रंथों में हमेशा निश्चय के व्यवहार है ही नहीं कह रहे अभूतार्थ कह रहे जहाँ जिस अपेक्षा से कथन होगा उसको समझना है यहाँ मुख्यता ये नौ पदार्थों को समझाना है इसी की यहाँ मुख्यता है फिर भी इसकी मुख्यता होने पर भी ये बताया कि जो निश्चय से है वही वो केवल ज्ञान का और अनंत सुख का कारण है। व्यवहार को साध्य का साधक कह देते हैं परंतु उसके कारण वो उत्पन्न होता ऐसा नहीं समझ वो होता है जिसके निश्चय होता है उसके ऐसा व्यवहार पाया जाता है। अब 13 नंबर का पेज
हाँ अभी इस समय व्याख्या जो है उस समय व्याख्या का अनुवाद देखते हैं हम 13 नंबर के पृष्ठ पर आ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी सूचना छे यानी अभी हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। काल सहित पंचास्ती कायना भेद रूप नव पदार्थों
તે ખરેખર ભાવો છે. ક્યા બતા રહે હૈ યે જો નવ પદાર્થ યાને નવ તત્વ જિસકો હમ કહે રહે નવ પદાર્થ યે ક્યા હૈ ભેદરૂપ ભાવ હૈ કાહે કે તો કહેતે હૈ કાલ સહિત પંચાસ્તિકાય યાને પંચાસ્તિકાય મેં પાંચ અસ્તિકાય બતાએ ઓર કાલ દ્રવ્ય યાને છ દ્રવ્યો કી અપેક્ષા સે ઉનકા ભેદ કરને સે નવ પદાર્થ જો હોતે હૈ વે ખરોખર ભાવો છે. ભાવો છે ને એવો પદાર્થ હૈ જો હમ નવ નામ દેખે હૈ તે ભાવોનું મિથ્યા દર્શનના ઉદયથી પ્રાપ્ત થતું જે અશ્રદ્ધાન તેના અભાવ સ્વભાવવાળો જે ભાવાંતર શ્રદ્ધાન અર્થાત નવ પદાર્થનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન છે. યહાં ક્યા બતાના ચાહતે બહુ અચ્છી બાત બતા રહે હૈ ક્યા કહે રહે હૈ યે અશ્રદ્ધાન હો રહા હૈ જિસકે બારે મેં નવ ભાવો કે બારે મેં યાને નવ પદાર્થો કે બારે મેં અશ્રદ્ધાન હો રહા હૈ ઉસકા કારણ ક્યા હૈ કે મિથ્યા દર્શન અને હમારી મિથ્યા માન્યતાએ જો હૈ યાને હમારી જો મિથ્યા હમારા જો તત્વો કે બારે મેં જો ગલત માન્યતાએ હૈ વો ઉસકા ક્યા કારણ હૈ કે તે સાત તત્વો કે બારે મેં અશ્રદ્ધાન હોતા હૈ અને શ્રદ્ધાન તેના અભાવ સ્વભાવવાળો યાને વો હૈ નહીં એસા જે ભાવાંતર યાને જો ભાવ નહીં હૈ એસે અલગ ભાવ શ્રદ્ધાન અર્થાત નવ પદાર્થનું શ્રદ્ધાન યાને ક્યા કહે રહે કે ઉનકે બારે મેં અશ્રદ્ધાન હૈ કિસકે બારે મેં કે નવ તત્વ જો હૈ ઉસકે બારે મેં નવ તત્વ કા અભાવ સ્વભાવ જો હૈ વો સચ્ચા શ્રદ્ધાન હૈ વહ કહેતે હૈ નવ પદાર્થનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યક દર્શન છે. કે જે સમ્યક દર્શન શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ આત્મતત્વના વિનશ્ચયનું બીજ છે. ક્યા કહે રહે હૈ એસા જો સમ્યક દર્શન હૈ એને તત્વો કે નવ તત્વો કે નવ પદાર્થો કે બારે મેં સચ્ચી જો શ્રદ્ધા હૈ વો સમ્યક દર્શન શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ આત્મતત્વના વિનશ્ચયનું બીજ છે. યાને આપણા જો શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કહા ગયા એસા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જો હૈ ઉસકો નિશ્ચય કરને કે લિયે વો બીજ હૈ કૌન સે ये नौ पदार्थों के प्रति जो हमारा सम्यक श्रद्धान है वह नौ का गमन ना संस्कार नी माफक मिथ्या दर्शन ना उदय ने लीधे जे वो स्वरूप विपर्य पूर्वक अध्यवसित थाय छे अर्थात विपरीत स्वरूपे समझाय छे भासे छे. ये जो सात तत्व जो नौ तत्व जो है या नौ पदार्थ जो है उसके क्या हो रहा है नौका गमन के संस्कार नहीं माफक. ये नौका गमन संस्कार मेरे को ख्याल में नहीं आया, मुझको ऐसा लगता है
नौका जा रही है लेकिन हाँ? अभी जा रहे हैं
हाँ? नहीं 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 अभी ट्रेन में बैठे हो तो क्या लगता है बाकी के बाजू के कोई ट्रेन है कुछ है तो बाकी चीजें उल्टी जा रही है. हम स्थिर है और बाकी उल्टे जा रहे ऐसा लगता है. आपने ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन जाती है हम तो स्थिर है तो क्या लगता है हम जा रहे हैं आगे और दूसरी ओर देखते तो प्लेटफॉर्म भी खड़े. या ट्रेन जा रही है तो नजदीक के चीजें उल्टी दिशा में जा रही है और दूर की झाड़े हमारे साथ चलती है ऐसा लगता है. ऐसा यहाँ नौका से जो चलना जाता है उसको ऐसा भाषित हो रहा है कि बाकी चीज जो है वो उल्टी जा रही है हमारे वो स्वयं आगे जा रहे हैं और उसको ऐसा लगता है बाकी जो किनारे पर चीजें वो उल्टी जा रहे हैं. ये कह रहे हैं मैं आगे का निकाल के देखा स्वामी जी के उसमें आ गया.
तो नौका गमन न संस्कार नहीं माफक तो क्या हो रहा है वो मिथ्या दर्शन के उदय के कारण से स्वरूप विपर्य पूर्वक यानी अपना जो स्वभाव है स्वरूप है या सात तत्वों के बारे में जो सही ज्ञान है अध्यवसित थाय छे. इसका अर्थ क्या क्या विपरीत स्वरूपे समझाए छे भासे छे यानी जो सच्चा ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान जैसे मिथ्या दर्शन के कारण विपरीत जाना जा रहा है. बोलो.
मिथ्यात्व के कारण ये ज्ञान सही नहीं, उल्टा हो रहा है, संशय को भी नहीं विपरीत उल्टा लिया, ऐसा भाषित हो रहा है उसको, निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा भाषित हो रहा है उसको, कोई दूसरा आकर मेरा कार्य करेगा तो ही होगा ऐसा भाषित हो रहा है, पर के कारण मेरा कार्य रुका है ऐसा भाषित हो रहा है, ये कहते हैं पुण्य करने से मुझे मोक्ष गर्म हो गया ऐसा भाषित हो रहा है, ये सब लेना उसके, और वो ऐसा ज्ञान में निमित्त वहाँ मिथ्या दर्शन का उदय गया मिथ्यात्व के कारण उसके।
एवा ते भावो नोज नव पदार्थो नोज मिथ्या दर्शन ना उदय थी उदय निवृत्ति होता है, मिथ्या दर्शन निकल जावे ते सम्यक अध्यवसाय सत्य समझन यथार्थ अवभास साचो अवबोध थवो ते सम्यक ज्ञान छे, यानी मिथ्या दर्शन निकल जाता है तो ज्ञान सही हो जाता है, ऐसी बात यहाँ पर बता रहे हैं।
देखो अध्यवसाय का अर्थ होता है ये सही ज्ञान, वो अध्यवसान वो अलग बात है, वो मिथ्या को सही राग आदि उसको अध्यवसान कहा था, वो बात अलग है, अनध्यवसाय है जो आता है शब्द वो तो अध्यवसाय क्यों उल्टा अनध्यवसाय, यानी निर्णय पूर्वक नहीं जानना, सही नहीं जानना, उसको जानना परंतु सही नहीं, इसी ब्रैकेट में लिखा ना सत्य समझन, जिसको हम सही ज्ञान कहेंगे। हाँ बोलो। देखो यहाँ अध्यवसाय का अर्थ क्या किया, सत्य समझन, यानी इसको हम सही ज्ञान कहते हैं, साचो अवबोध, वो ज्ञान के जो मिथ्या ज्ञान के भेदों में संशय विपर्य और अनध्यवसाय कहते हैं, अनध्यवसाय वो अध्यवसान नाम जो समय सार में आता है ना, अध्यवसान से बंध है, बंध का कारण, तो उसमें मिथ्या तो सही जो राग द्वेष के परिणाम उसको भी लेना है, कहीं कहीं केवल कषायों को भी उस शब्द से बंध के कारण है उसको अध्यवसान कहते, ये आपकी आवाज नहीं सुना दे रहे हैं। हाँ क्या किसके लिए अनध्यवसाय, बिना निर्णय के वो कुछ तो हमें चलते समय कुछ तो लगा पैर में, लगा इतना समझा ज्ञान हुआ, तो क्या था क्या पता ऐसा हम कहते ना, कुछ तो हुआ उसको कहेंगे अनध्यवसाय, अनध्यवसाय सही जानना नहीं हुआ है, जानना हुआ है परंतु वो तो कुछ तो ऐसा निर्णय पूर्वक नहीं हुआ है। हाँ
ये सम्यक ज्ञान छे, यहाँ तक आए हम के जे सम्यक ज्ञान कायिक अवश्य ज्ञान चेतना प्रधान आत्मतत्वनी उपलब्धिनु अनुभूतिनु बीज छे, यानी हमने जो कर्म चेतना कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना जो कह रहे हैं वो ज्ञान चेतना की बात यहाँ पर बता रहे हैं, कायिक अवश्य ज्ञान चेतना प्रधान आत्मतत्वनी उपलब्धिनु यानी अनुभूति नु बीज छे।
ऊपर जो बताए ना नव तत्वों का जो यानी मिथ्या दर्शन ना उदय निवृत्ति यानी मिथ्या दर्शन का उदय का अभाव होने पर ये जो सम्यक ज्ञान जो है साचो वो सौदे सम्यक ज्ञान छे, वो कब किया मिथ्या दर्शन का उदय मिटने पर, यानी वहाँ सम्यक दर्शन उसको हुआ है निश्चय, और तब उसका जो ज्ञान है नव पदार्थों संबंधी उसको यहाँ निश्चय अनुभूति होने का बीज कहा, वो एक समय में होगा ना कि पहले मिथ्या दर्शन के उदय होते हुए नहीं कहा था उसको, व्यवहार समय दर्शन नाम कब दिया, व्यवहार समय ज्ञान नाम कब दिया उसको, बीज कहा किसका निश्चय का, कब उसी समय, पहले नहीं कहा, उस समय मिथ्या दर्शन की निवृत्ति हो गई थी, उदय की निवृत्ति है नहीं, उसके उदय का अभाव है नहीं, सम्यक तो ऑलरेडी है उस समय, उस समय का जो उसका ज्ञान है कौन सा, ये जिसको हम व्यवहार से जिसको गए नौ तत्वों संबंधी सच्ची सच्चा ज्ञान सही समझन, उस समय वो निश्चय का बीज बताया। देखो फिर से पढ़ो, मिथ्या दर्शन ना उदय नहीं निवृत्ति होता, मिथ्या दर्शन के उदय होने पर नहीं कहा, यानी ये जो कहते ना पहले व्यवहार होगा फिर बाद में निश्चय होगा, ऐसा नहीं है, उसी समय हो रहा है, यह लिखा है कि नहीं? ऐसा भी जो है चौथे भी कहते ना कि नहीं नहीं वो तो शास्त्र का ज्ञान वही वो समय दर्शन है, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, उसके लिए ये तो वचन है।
मैंने कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहले जाना था वो तभी तो मिथ्या ज्ञान ही था, लेकिन जब समय दर्शन,
बिल्कुल बिल्कुल तभी उसका समय ज्ञान, इसलिए समय ज्ञान शब्द आया यहाँ पर। क्या लिखा? मिथ्या दर्शन ना उदय नहीं निवृत्ति होता जे सम्यक अध्यवसाय थवो ते सम्यक ज्ञान छे के जे सम्यक ज्ञान कई कौशे ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व नी उपलब्धि नु अनुभूति नी बीच छे। यानी यहाँ वर्णन तो उस व्यवहार का चल रहा है और उसको निश्चय के बीज रूप से बता रहे हैं, और वो कब? उसी समय, पहले नहीं। अध्यवसाय जो यहाँ लिखा है वो ज्ञान है, सही जानना,
सच्चा ज्ञान,
सही जानना। अध्यवसान म्हणजे मिथ्यात्व, एकत्व बुद्धि सहित जो राग द्वेष है उसको अध्यवसान कहते हैं, जो बंध का कारण है। उसी में मैं बता रही हूँ, अध्यवसाय अध्यवसाय सही ज्ञान है, और अध्यवसान ये राग द्वेष के परिणाम है, बंध के कारण, वो मिथ्या तो सहित वाले राग द्वेष लिए मुख्यता से, उसको अध्यवसान न कहते। आप बंध अधिकार निकाल के देखना, अध्यवसान ही बंध का कारण है ऐसा जहाँ तहाँ आया है। और ये अध्यवसाय है वो तो सही ज्ञान है, वो तो सम्यक्त्व का कारण कहेंगे। हाँ आगे
नीचे से तीन दो पांचवी लाइन, सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञान ना सद्भाव ने लीधे समस्त आगमो थी
अमार्गो थी
सॉरी समस्त अमार्गो थी छूटी ने जेवो स्वतत्वमां विशेषपणे रूढ़ मार्ग वाला थया छे तेमने इंद्रिय ने मनना विषयभूत पदार्थों प्रत्ये राग द्वेष पूर्वक विकार अभाव ने लीधे जे निर्विकार ज्ञान स्वभाव वालों समभाव होय छे ते चारित्र छे के जे चारित्र ते काले आगामी काले रमणीय छे अने अपुनर्भवना एटले मोक्षना महा सौख्यनू बीज छे।
एक
बीज देखो क्या कहना चाहते हैं कि जिसके पास सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सद्भाव है वो जीव क्या करेगा, यानी यथार्थ श्रद्धा है और यथार्थ ज्ञान हुआ है वो क्या कहते हैं कि वो अमार्गों यानी खोटे मार्गों से छूट कर जे वो स्वतत्व में विशेषपणे रूढ़ मार्ग वाला थया छे यानी अपने स्वरूप में एकाग्र होने वाले मार्ग में वो एंटर हो रहे हैं हुए हैं तेमने इंद्रिया ने मनना विषयभूत पदार्थों प्रत्ये या इंद्रिय यानी पंचेंद्रिय के द्वारा जो जाना जाता है ऐसे विषयों के बारे में राग द्वेष पूर्वक विकार ना अभाव न लीधे अभी उनके प्रति उनके कोई राग द्वेष के परिणाम रहे नहीं है समता भाव जागृत हुआ है जे निर्विकार ज्ञान स्वभाव वालों समभाव हो यानी वहाँ समता भाव प्रकट हो गया है उसको यहाँ चारित्र कहा है ते चारित्र छे के जे चारित्र ते काले अने आगामी काले रमणीय छे यानी जिस समय स्वरूप में स्थिरता है उस समय भी वहाँ वह रमणीय है रमणीय ने मन को हाँ जी आनंददायक हाँ ते काले अने आगामी काले यानि इन भविष्य में भी आनंददायक है अने अपुनर्भवना अपुनर्भव यानि मोक्षना महासौख्यनु एक बीज छे यानि जो स्वरूप में स्थिरता है वही धर्म की शुरुआत है जो स्वरूप में स्थिरता है वही मोक्ष का कारण है और उसी मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आवा आत्री लक्षण यानी कौन से तीन लक्षण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग नो आगळ निश्चय अने व्यवहार थी व्याख्यान करवामा आवशे। अहीं तो सम्यक दर्शन अने सम्यक ज्ञान ना विषयभूत नव पदार्थोना उद्घाटना हेतु तरीके तेनु सूचन करवामा आयु छे। अने अभी यहाँ पे इसके आगे हमको नव पदार्थों के बारे में सारी बातें बताएंगे। अभी प्रवचन पढ़ते हैं।
रमणीय का लीनता है, आत्मा में स्थिरता।
हाँ, स्थिरता, रमणीयता यानी सुख देने वाला जिसको हम कहेंगे। नहीं, ये दृश्य बहुत रमणीय है कहते ना।
नहीं नहीं, वो रमणता, आत्मा में रमणता।
तो बन ये क्या है?
लीनता।
आगामी काले रमणीय छे,
मन को जो रमणीय लगता है वो भाव है।
मन
वो रमणीय शब्द वापरा हुआ है,
मन के लेकिन आनंददायी अर्थ में लिया होगा, परंतु वो रमणीय रमना है ने वो हमने उसमें रमना चरना स्थित हो जाना उसी अर्थ में, यानी ये विषय यहाँ व्यवहार का चल रहा है। व्यवहार समय दर्शन, व्यवहार समय ज्ञान, व्यवहार समय चारित्र, जिसको निश्चय है उसके ये व्यवहार होता है, ऐसा ये बार बार बता रहे हैं। तो जिसने ये बताया ना, स्व तत्व में जो विशेष रूढ़ हुआ है उसको इंद्रियों और मन के विषयों के प्रति समभाव है, और उसको और आगे रमणीय होना इन्हें लीनता का वो बीज है ऐसा कहें, क्योंकि अभी तो वो स्वरूप में लीन है ही है, तो उसका तो सहचर है ही है वो, उसमें आगामी काल में क्योंकि उसका उसका लक्ष्य तो अपना स्वभाव का ही है, और जिसको स्वभाव में लीनता होती है बारंबार उसको बाह्य विषयों में समभाव वर्तता है, और ये आगामी और रमणता करने के लिए और वो बीज है, इतनी बात है। तो जो निश्चय से अंतरंग में रमणता है वही मोक्ष का बीज।
अभी प्रवचन पढ़ते हैं।
ये नीचे के दो वाक्य हो गए
हवे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनु स्वरूप कहे छे। भगवाने छ द्रव्यो वर्णव्या छे, तेनी प्रतीति करवी ते व्यवहार श्रद्धा छे। ये छह द्रव्यों के नाम आपको मालूम है ना बेन, तो आपको व्यवहार श्रद्धा ऐसा कह रहे। ठीक है, देखो भगवाने छ द्रव्य वर्णव्या छे, तेनी प्रतीति करवी, हमने प्रतीति की है कि नहीं वो आपके हाथ में है, ते व्यवहार श्रद्धा छे। केसर लेवा माटे कानावाड़ा कोथड़ो काम आवतो नथी, पण टीनो डबो काम आवे, तेम आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप छे, तेनी प्रतीति माटे छ द्रव्यो आदिनी प्रतीति रूप व्यवहार समकित ते बारदान छे। यानी वे ये क्या कहना चाहते समझ में है? आप कभी केसर खरीदने गई है? नहीं, इसलिए मालूम नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, बारदान लेके जब बारदान की थैली ले जाए तो उसके काने में से केसर नीचे गिर जाता है। हाँ, उसके लिए टिन की डब्बी ले जाना है, यानी टिन की डब्बी कहो या कोई आपके पास सोने की डब्बी हो तो सोने की ले जाए, लेकिन जिसमें वो बराबर बैठे बाहर नहीं निकले। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो व्यवहार सम्यक तो है ते तो बारदान छे, यानी उसमें स्वरूप की स्थिरता नहीं होगी, ये कह रहे। व्यवहार श्रद्धा खोटी होए ने सम्यक दर्शन प्रकटी जाए तेम बनतु नथी, साची व्यवहार श्रद्धा विना निश्चय समकित होए नहीं, ने व्यवहार नो अभाव करिया विना निश्चय समकित प्रकटे नहीं, एम बनने बात समझवी जो ही है। देखो दोनों बातें बताते हैं। पहले क्या बताया कि जो व्यवहार श्रद्धा खोटी होगी तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, यानी अभी हम फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये सात तत्वों में जो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व भी है और नव पदार्थों में पुण्य परिणाम जो है, पुण्य तत्व, तो ये नौ में से एक है। ये नौ अलग अलग है इसलिए सबके नाम अलग अलग है कि नौ ही नौ एक ही है इसलिए नौ अलग नाम है? नौ अलग अलग है, यानी जहाँ जीव है वहाँ पाप तत्व, या जहाँ जीव है वहाँ पुण्य तत्व, ये जुदे जुदे बताया बराबर। तो हमने क्या माना, वास्तविकता क्या होती है कि स्वरूप में स्थिरता जो है वही धर्म की शरण देने सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना, यही धर्म की शुरुआत है। दूसरी भाषा में शुद्ध उपयोग यानी शुद्ध स्वरूप में एकाग्र होना, यानी हम उसको शुद्ध उपयोग कहेंगे, वही धर्म की शुरुआत है। वहाँ उस समय इस जीव का उपयोग कहाँ रहता है, तो कहते हैं स्व में रहता है। और हम पुण्य के परिणाम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमारा उपयोग कहाँ है, स्व में है क्या पर में है? तो पर में है, इसका अर्थ हमको उस समय शुद्ध उपयोग नहीं है। और वो क्या है कि शुभ भाव है कहो या पुण्य परिणाम है, तो पुण्य परिणाम करने से धर्म होगा क्या? हमने माना है कि शुभ करने से धर्म होगा, तो हमारी ये सात मान्यता में से एक मान्यता गलत निकली। हमने समझा कि संवर यानी स्वरूप में स्थिरता जो है वो धर्म है, तो हमने माना कि आश्रव यानी पुण्य परिणाम करने से धर्म होता है, तो हमने आश्रव तत्व संबंधी भी भूल की, आपकी भाषा में पाप पुण्य परिणामों की, पुण्य तत्व की और संवर तत्व की भी भूल की। यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यवहार श्रद्धा खोटी हो ने सम्यक दर्शन प्रकटी जाए तेम बंतु नथी। और हमारा क्या अभी तो फिलहाल हमारी क्या इच्छा है कि हमको सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन होने के लिए बोलो ना कैसा करने का, वही तो बता रहे हैं कि सातों ही तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। तो सात तत्वों के पहले यानी अभी नव पदार्थ समझ लेना, मैं सात तत्व भले बोलूं, नव पदार्थों के नाम हमें आने चाहिए, नाम आने के बाद उसका स्वरूप क्या है ये समझने चाहिए, और प्रत्येक तत्व में क्या भूल होती है जीवों की वो समझ में आवे, तो मेरी उसमें से कौन सी भूल हो रही है ये भी हमारी पकड़ में आएगा। यानी जीव को जीव संबंधी भूल हो रही है, जीव को अजीव संबंधी भूल हो रही है, यानी मैंने अजीव को ही जीव माना है, ऐसा माना कि नहीं आपने, क्या माना बोलो, अजीव अजीव ये क्या है, हाँ? शरीर अजीव है और मैं अजीव रूप हूँ, मैं शरीर रूप हूँ, ऐसा मैंने माना। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब तक हम ये भूल टालेंगे नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। और ये किसने बताया, तो जिनेंद्र भगवान ने बताया, तो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझे बिना, जिनेंद्र भगवान ने कही हुई बातें सत्य है या असत्य है इसका निर्णय हमें नहीं होता है। इसलिए पहले में पहले हमने जिनेंद्र भगवान को जो परिपूर्ण वितरागी है, इनका स्वरूप देखा कि वे वितरागी है और वे सर्वज्ञ है, और जो मुनियों का स्वरूप है वो आंशिक वितरागी है, तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता उनके वर्तती है, और वह सत्य महाव्रतधारी है, तो वो भी झूठा नहीं लिखेंगे बोलेंगे। तो ऐसे सच्चा देव, सच्चा गुरु और सच्छात्र, इसका स्वरूप समझना भी उतना ही महत्व का है। तो ये सात सच्चे देव गुरु शास्त्र कहो या ये नौ पदार्थ कहो, इनका यथार्थ स्वरूप समझे बिना, यानी यथार्थ तो भेद करके हम समझ रहे हैं, तो ये व्यवहार श्रद्धान हमारा हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, व्यवहार श्रद्धा खोटी होय ने सम्यक दर्शन प्रकटि जाय एम बंतु नथी। तो इतना लंबा 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 हमको क्यों समझा रहे हो, तो ये कारण है, समझ में और फिर उसके आगे ये स्टेप नंबर वन कौन सी, व्यवहार श्रद्धा खोटी होय यानी गुरु को हमने स्वरूप क्या माना, कि गुरु हमारा कुछ भला कर देवे, ऐसा हमने माना। तो कोई किसी का कुछ कर सकता है कि नहीं, ये पहले नक्की करने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। कि केवल हम यहाँ आते हैं और यहाँ आप आते हैं इसलिए हाँ नहीं 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 एक द्रव्य नहीं, ये तो इनके यहाँ तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करते हैं, चलो वहाँ जाएंगे। तो व्यवहार श्रद्धापन साची नहीं है ऐसा बताने, तो सम्यक दर्शन का नाम ही नहीं। समझ में? क्योंकि हमको जो पसंद आता है ऐसा अगर कोई बताने वाला मिल गया तो उसके शिष्य हो जाते हैं, और जो अपने माथे को धक्का देने वाला कोई कथन होवे तो कोई नहीं आवे। यहाँ पांच लोग हैं तो वहाँ 5,000 है। परसों एक बहन आई थी मालूम है ना, इतवार को, वो क्या बोली थी मालूम है आपको? ये सच्चा देव के बारे में जब बात चल रही थी, वो यहाँ अरविंद भाई बैठे वहीं बैठी थी, तो अमिताभ बच्चन वो सर कौन सा सिद्धि विनायक चलते चलते जाता है, तो वो क्या है वो तो है, उसका मानना क्या हमारा, तुम कह रहे हो वो मानना। हाँ हाँ
ये तो लगता है ना, कुछ तो है ना, मिथ्या तो है बड़ा, वो भी बड़ा है उसका।
तो कह रहे देखो पहला पॉइंट कौन सा है, एक मिनट में खत्म कर देता हूँ। व्यवहार श्रद्धा खोटी होए ने सम्यक दर्शन प्रकटि जाए तेम बनतु नथी। दूसरी बात, साची व्यवहार श्रद्धा विना निश्चय समकित होए नहीं। ने व्यवहार ना अभाव कर्या विना निश्चय समकित प्रकटे नहीं। अभी इसकी बात हम कल लेंगे, अभी तो यही रुकना है क्योंकि हमको जाना है ना। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होड़ो।